भाग तीन, खंड दो। महाकाश्यप पाली में महाकश्यप को कैसे धोखा हुआ था। सयादों ने कहा, त्रायस्त्रिंश पाली में ताउतिंस अर्थात 33 देवलोक के राजा शक्र पाली में शक अर्थात इंद्र हैं, क्या नहीं है? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ भंते, हाँ ठीक है, वे वहाँ हैं। तवतिंस लोक के राजा शक विद्यमान हैं। अच्छा, वे कैसे तवतिंस देवलोक के स्वामी शक बन गए? उन्होंने कौन से पुण्य अर्जित किए थे? उन्होंने अपने एक विगत जीवन में पुण्य संचित किए थे भंते। यहाँ हम बता दें कि इस संदर्भ में सुत्त पिटक के संयुक्त निकाय के सगाथा वग के सक संयुक्त के द्वितीय वग के वत पद सुत्त को देख सकते हैं। अंग्रेजी में पाली टेक्स्ट सोसाइटी लंदन द्वारा 1979 में प्रकाशित किंड्रेड सेइंग्स वॉल्यूम 2 पृष्ठ 293 से 295 देख सकते हैं। तो सयादों ने आगे बताया, जब किसी बुद्ध की शिक्षा उपलब्ध होती है तो उस कालखंड में पुण्य संचित करना एक बात है, किंतु शक के प्रयास इतने प्रबल थे कि जब बुद्ध की शिक्षा उपलब्ध नहीं थी उस समय भी वे केवल अपने स्वयं के प्रयासों पर आश्रित थे। वह एक धनवान पुरुष था, उसे खाने पीने के विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और उसे किसी पौष्टिक आहार के लिए बर्मी मुद्रा का एक चैट या आधा चैट भी नहीं व्यय करना पड़ता था, इसलिए उस पर कोई बोझ नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने कुशल दस्तकारों एवं श्रमिकों को नियोजित किया तथा बिना किसी अवकाश के वह उन लोगों के साथ रात दिन काम करता रहा। वह क्या कर रहा था, वह जन कल्याण के लिए काम कर रहा था। उन स्थानों पर जहाँ कोई कुआं और सरोवर नहीं था वह वहाँ कुआं एवं सरोवर खोदता। उसने यात्रियों के लिए अच्छी सड़कों का निर्माण किया और इस प्रकार दूसरों के सुख के लिए काम करते हुए अपना जीवन बिताया। जब वह अपने निवास के निकट काम करता तो वह अपने आवास पर आकर रुकता, किंतु जब उसकी परियोजना किसी दूर स्थान में होती तो वह घर आए बिना ही काम करता रहता। जब उसके साथ अनेक लोग काम कर रहे होते तथा जब अन्य लोग ईमानदार होते तो वह प्रसन्न होता था। इस प्रकार बिना अवकाश लिए काम करते रहने के पश्चात व्यक्ति वर्तमान एवं भविष्य का सामना कर सकता है। शक ने अपने जीवन के अंत तक कभी अवकाश लिए बिना काम किया और इस कारण वह शक बना। विश्व में बुद्ध की जागृति तथा त्रिरत्न के उदय होने के पश्चात बुद्ध धम्म एवं संघ के सत्कार से अर्जित पुण्य के प्रभाव से प्राणी अपने नियत जीवन काल के अंत में तावतिंस लोक में पुनर्जन्म लेने लगे। चूंकि शक उस लोक के राजा हैं अतः अन्य देवताओं को उनको नमन एवं सत्कार करने के लिए जाना पड़ता है। और क्या हुआ, जो त्रिरत्न की थोड़ी सी सेवा के परिणाम स्वरूप तावतिंस लोक में आए थे अब वे देवता तथा देवियां भी शक को नमन करने आए, किंतु उनकी वेशभूषा उनके शरीर उनके परिवहन साधन एवं महल इतने देदीप्यमान और भव्य थे कि प्रकाश के चकाचौंध में राजा इंद्र का वस्त्र शरीर और महल फीका पड़ गया तथा कठिनाई से ही देखा जा सकता था, तो यह हुआ। यहाँ हम बता दें कि इस कथा के लिए धम्म पद अट्ठ कथा के पुफ वग्गो के महाकश्यप थेर पिंडपात दिन्नवत्थु देख सकते हैं, अंग्रेजी में बर्लिंगमे द्वारा अनुदित पाली टेक्स्ट सोसाइटी लंदन द्वारा 1979 में प्रकाशित बुद्धिस्ट लेजेंड्स के भाग दो में पृष्ठ 86-89 देख सकते हैं। तो सयादा ने आगे बताया, अच्छा तो शक का उत्कृष्ट रंग तथा उनका तेज लुप्त नहीं हो गया था, किंतु इन देवताओं का और भी अधिक देदीप्यमान था, इसलिए फीका लगता था। वह अब बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था, वह केवल चांद एवं नक्षत्रों की तरह था। जब वे रात में चमकते और जगमगाते हैं केवल तभी यदि आप देखें तो उन्हें देख सकते हैं। आप उन्हें देखते हैं और उनकी चमक की प्रशंसा करते हैं, किंतु जब भोर होती है तो आकाश प्रकाशमय हो जाता है, तब सूर्य निकल आता है और क्या होता है तो चांद और सितारों का प्रकाश क्या अभी भी वहाँ होता है? बनते प्रकाश तो अभी भी वहाँ होता है, क्या आप उसे देख सकते हैं? सूर्य का प्रकाश उनसे अधिक होता है बनते, किंतु क्या आप अब भी चांद और सितारों को देख सकते हैं? वे कहाँ चले गए? वे कहीं नहीं गए बनते, वे अब भी वही हैं, किंतु चूंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज है कि हम उन्हें देख नहीं सकते बनते। शक के साथ भी ऐसा ही हुआ। वे देवी देवता जिन्होंने बुद्ध तथा उनकी शिक्षा के सम्मान के माध्यम से पुण्य अर्जित करने के कारण तावतिंस लोक में पुनर्जन्म लिया था, उगते सूर्य की तरह थे और शक से निकलती आभा एवं वर्ण क्षीण होकर धूमिल हो गया था। अब बाप रे बाप, वे इतने शर्मिंदा हुए कि समझ नहीं पाए कि इन देवताओं के बीच वे कैसा व्यवहार करें। उन्होंने चाहा कि ऐसा हो कि उनका सिर कई टुकड़ों में विभाजित हो जाए। इन सब के कारण वे इतने अपमानित अनुभव कर रहे थे। जब वे देवता शक के महल के पास पहुँचते तो शक के वस्त्र शरीर तथा परिवेश की आभा बस फीकी पड़ जाती, तो बुद्ध शासन अर्थात बुद्ध धर्म के अंतर्गत एवं उसके बाहर पुण्य संचित करने में इतना महान अंतर है। इंद्र इतने लज्जित तथा आहत थे कि अब उनका बाहर जाने का भी साहस नहीं होता था और लगता है कि वे छिपे रहे। भंते मैं समझता हूँ कि शक अत्यंत दुखी हो गए होंगे, क्या आप नहीं होंगे? मैं भी अत्यंत दुखी होऊंगा भंते। एक राजा होने के उपरांत भी वे गहरे संकट में थे। देखिए, दोनों कुशल अर्थात अच्छे कार्य हैं और पुण्य प्रदान करते हैं, किंतु शासन के अंतर्गत बस थोड़े से प्रयास से आपको बहुत कुछ मिल जाता है, यही अंतर है। परंतु अतीत में क्या हुआ उसे शक बदल नहीं सकते थे, केवल बाद में ही वे पुनः शक्तिशाली हुए। वे समझ गए कि दान तथा नैतिकता के अन्य कार्यों द्वारा किए गए अच्छे कर्म वास्तव में शासन के अंतर्गत अत्यंत महान होते हैं। शासन के बाहर किए गए कार्यों की तुलना में वे अत्यधिक श्रेयस्कर होते हैं, किंतु यद्यपि वे यह समझते थे फिर भी वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे थे उन्हें वैसे ही जीवन यापन करना था। एक बार जब वे शासन के अंतर्गत पुण्य कार्य करने के महत्व को समझ गए तो उन्होंने अपने अनुगामी देवी देवताओं से अच्छे कर्म करने के लिए कहा और वे देवी देवता तुरंत कार्यान्वित करने के लिए चल पड़े। वे वहाँ गए जहाँ आदरणीय महाकश्यप निवास कर रहे थे और भिक्षु ने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, आदरणीय भंते, हम तावतिंस देवलोक से पुण्य कर्म करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। तथापि महाकश्यप ने कहा, आज मैं उन प्राणियों को कुशल कर्मों द्वारा अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने का अवसर प्रदान करना चाहता हूँ जो पीड़ित हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है, आप लोग तो विशेषाधिकृत प्राणी हैं। आप लोग जहाँ से आए हैं वहाँ वापस जा सकते हैं। अतः उन्हें कोई पुण्य अर्जित किए बिना ही तवतिंस लोक में लौटना पड़ा। जब उन्होंने शक को यह सूचित किया तो उन्होंने अपने मन में सोचा, किंतु मुझे तो यह विशेष पुण्य किसी न किसी प्रकार से प्राप्त ही करना है। अच्छा, तो वे यह जानते थे कि जब महान भिक्षु निरोध ध्यान अर्थात निरोध समापत्ति से बाहर निकलते हैं तो उनको नमन करना पुण्य होता है। अतः वे राजगृह, पाली में राजगह, आधुनिक राजगीर के निकट एक वृद्ध पुरुष के रूप में परिणत हो गए। एक ऐसा वृद्ध पुरुष जो बिना किसी देखभाल करने वाले संतान या नाती पोते के अत्यंत बेचारा था। यद्यपि उसका शरीर दुर्बल था और कांप रहा था, फिर भी उसे अपने जीवन यापन के लिए काम करना पड़ रहा था। उसने एक छोटी सी चरमराती झोपड़ी भी रची जिसमें वह किसी भी सुविधा के बिना रहता था। सक की रानी सुजाता ने भी स्वयं को ढलकती पलकों तथा झुर्रियों वाली त्वचा की एक जर्जर वृद्ध स्त्री में रूपांतरित कर लिया और वे दोनों बाहर देहात में रहने लगे। अच्छा, जब महाकश्यप ने उन्हें देखा तो उन्होंने सोचा, ये वृद्ध लोग दरिद्रता से त्रस्त एवं निरीह हैं। 80 या 90 की उन्नत आयु में भी इन्हें भोजन पानी के लिए काम करना पड़ता है। आज मैं इन दोनों पीड़ित व्यक्तियों को अपनी परिस्थिति से ऊपर उठने का अवसर दूंगा। और वे उनकी झोपड़ी से थोड़ी दूर पर रुके। शक और सुजाता निसंदेह केवल नाटक कर रहे थे, अभी भी अपना छद्म बनाए हुए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने हाथों से उन्हें ढक लिया, जैसे लगे कि वे बेहतर देखने का प्रयास कर रहे हों। तब वे महाकश्यप की ओर बढ़े। उन्होंने पूछा, आदरणीय भंते, क्या आप श्रद्धेय महाकश्यप हैं? हम अत्यंत दरिद्र हैं, फिर भी हमें अपना समय अपने जीवन यापन के लिए काम करने में व्यतीत करना पड़ता है। अब जबकि आप आ गए हैं आदरणीय भंते, हम शिष्य आपको सेवा प्रदान कर सकेंगे। कृपया हमें पुण्य अर्जित करने दीजिए। देखिए, इनके लिए उनसे कपट करना आवश्यक था, क्योंकि यदि इनका असत्य पकड़ा जाता तो ये जो उपलब्ध करना चाहते थे उसमें ये सक्षम नहीं हो पाते। अतः ये बहुत झेपते हुए अत्यंत विनम्रतापूर्वक महाकश्यप की ओर बढ़े तथा उनके पात्र में इन्होंने दैवी व्यंजन रखा। इन्होंने उचित शिष्टता के साथ भिक्षा पात्र में भोजन रखा तथा पर्याप्त मात्रा में दिया। भोजन दान करते समय शक ने कहा, चूंकि हम उदारता की एवं उदार उपहार ग्रहण करने वालों की आराधना करते हैं, हम स्वयं अपने हाथों से और अथाह आदर के साथ इसे भेंट करते हैं। भंते, दिव्य भोजन निश्चित रूप से अत्यंत सुखद सुगंध दे रहा था। अतः महाकश्यप ने इस विषय की जांच की और शक और सुजाता ने जो किया था उसका उन्हें पता चल गया। इसके पहले उन्हें इसका पता नहीं था। जब उन्होंने इस विषय की जांच की तब जाकर वे जान पाए कि क्या हो गया। जांच करने से पहले वे कैसे जान सकते थे? यद्यपि वे महान शक्ति एवं अलौकिक ज्ञान से संपन्न एक अर्हत थे, फिर भी वे बातों को जांच किए बिना स्वतः नहीं जानते थे। भंते, क्या वे इसलिए नहीं जानते थे कि उन्होंने इस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था? जब महाकश्यप अमुक विषय पर ध्यान नहीं केंद्रित करते तो उन्हें उसके बारे में नहीं पता होता था। इसी कारण उनके साथ धोखा हुआ बनते। किंतु अब महाकश्यप ने कहा, आप शक हैं, है ना? बनते, यह सही है। शक ने उत्तर दिया, बनते, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें इतना दुख और संकट सहन करना पड़ता था। महाकश्यप ने कहा, आप तो एक आनंदमय अस्तित्व में अपार वैभव तथा सभी प्रकार के सुख के साथ रह रहे हैं, क्या नहीं? शक ने कहा, हाँ, शक के रूप में मैं इन सभी चीजों का आनंद उठाता हूँ। जब कोई बुद्ध शासन उपलब्ध नहीं था, तब पुण्य अर्जित कर मैंने इन सारी शक्तियों एवं सुखों को प्राप्त किया। अब जबकि एक बुद्ध उदय हो गए हैं, तो प्राणी बहुत छोटे छोटे सत्कर्मों के निष्पादन के परिणाम स्वरूप तावतींस लोक में पुनर्जन्म ले रहे हैं। जब वे मेरा सत्कार करने के लिए आते हैं, तो वे इतने दीप्तिमान होते हैं कि मेरा अपना वैभव उनके सामने शून्य की तरह फीका पड़ जाता है। इतना ही नहीं, जब वे मेरे महल के निकट आते हैं, तो मुझे छिपना पड़ता है। बनते, आप देखिए, उन्हें छिपना पड़ता था क्योंकि वे लज्जित थे। उन्होंने अपार दुख सहन किया। वे एक शक्तिशाली राजा थे, किंतु जब उनकी प्रजा उनकी सेवा करने उनके पास आती थी, तो उन्हें कष्ट होता था। इस परिस्थिति को परिवर्तित करने में वे असमर्थ थे और उनका सारा संसार ध्वस्त हो गया। वे सोचते थे, यदि मेरा सिर अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाए, तो वही बेहतर होगा। उनका कष्ट इतना अधिक था, इसी कारण उन्होंने महाकश्यप से कहा, हम भी पीड़ित प्राणी हैं। अच्छा, तो एक बार जब वे पुण्य करने में सफल हो गए, तब उन्होंने भी चमकना प्रारंभ कर दिया। तब बेचारे शक फिर से मुस्कुरा सकने तथा आनंदित हो सकने लगे। आप देखिए कि उन्होंने अतीत में पुण्य संचित किए थे, किंतु बुद्ध के शासनकाल में तथा उसके बाहर पुण्य अर्जित करने में अपार भिन्नता है। मैं इस बात पर पर्याप्त रूप से जोर नहीं दे पा रहा हूँ, तो अब यह सही समय है। यह एक अच्छा अस्तित्व है ना?